Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
अगर आपको कभी भी विचार आया कि मैं तो अज्ञानी हूँ, तो अब थोड़ा और विचार कीजिए कि भीतर कोई और ज्ञानी है, कोई और बड़ा है जो कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ। अब मुझे उसको मात्र जानना ही है और वो जानने की व्यवस्था यहाँ है। शास्त्र, उपनिषद, गुरुजनों का सत्संग और संपर्क इसीलिए करना है कि वो जो है वो मुझे पता नहीं है कि किसने जाना। अब तक ज्ञान ही नहीं गया कि कोई भीतर और जानने वाला ज्ञानी बैठा है। यहाँ ये मात्र, ये शास्त्र जो है वो आईने का काम करते हैं, मात्र दर्शन ही कराते हैं, विधि बताते हैं, व्यवस्था बताते हैं। ज्ञान को जानने की, ज्ञान उत्पत्ति का कारण नहीं, वो उत्पन्न नहीं हो सकता, किसी को दिया भी नहीं जा सकता, किसी से छीना भी नहीं जा सकता। मात्र अंगुली निर्देशन करके बता सकते हैं कि इस प्रकार आप सोचिए। अब तक आप जो सोच रहे थे, अब थोड़ा आप आगे सोचेंगे घर जाके, देहाध्यास बराबर है, जानने वाला कौन है। अब आपके भीतर कुछ और चलेगा। जानने वाला कौन है उसे आप नहीं जानना, उसे बताने की जवाबदारी हमारी है, वो फर्ज हमारा है कि वो कौन है। तो वो कौन है, वो कैसा है, उसी की बात ये उपनिषद में की गई है। पर यहाँ माध्यम जो है, अवलंबन जो है, उपनिषद ने यहाँ आत्मा जो है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ओमकार के माध्यम से बताया है। ओमकार के अवलंबन से, इसे क्या कहते हैं, अवलंबन से बताया है। तो भाई परमात्मा को अवलंबन की क्या जरूरत है? तो यहाँ कहें परमात्मा को अवलंबन की जरूरत नहीं है। अवलंबन किसे है? तो भाई ये जो अज्ञानी जीव है, जो खुद को कर्ता भोक्ता मान रहा है अविद्या से, अनादिकाल से जो अविद्या चल रही है, विपरीत ज्ञान जो चल रहा है, उससे जो ये देहाध्यास से ग्रसित हो गया है, उसे बताने के लिए अवलंबन। अगर हम उसको अवलंबन भी नहीं देंगे तो ये पूरा अज्ञान में पड़ा हुआ जीव सीधा परमार्थ में नहीं पहुंच सकता, सीधा परमार्थ तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, आप मूर्ति पूजा करते हैं ना, मूर्ति को पूजते तो है ना, घर में नहीं है तो बाहर भी बड़े मंदिरों में हम जाते हैं, तो वो क्या है? हाँ, ये साकार मूर्तियां क्या है? वो भी अवलंबन ही है, तो उसका वांधा नहीं है। तब हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि भाई ये मूर्ति अवलंबन क्यों है भाई। अच्छा, आप जप करते हैं ना, मंत्र जप करते हैं, माला फेरते हैं, तो वो भी अवलंबन ही है, उसका वांधा नहीं है। हाँ, पर ये ओमकार की जब हमने बात कर दी कि ये ओमकार अवलंबन है, तो बोले कि परमात्मा को अवलंबन की क्या जरूरत है, तो भी परमात्मा को मूर्ति के अवलंबन की भी जरूरत नहीं है। वो निर्गुण निराकार को हम साकार में डाल देते हैं, वो निराकार को आकार में डाल देते हैं, तो वहां हर्ज नहीं है, तो यहाँ क्यों होना चाहिए? और इसीलिए ये अवलंबन की बात तक आने के लिए जो नहीं होना चाहिए, उसकी बात कठोपनिषद में बहुत सुंदर तरीके से यमराज ने नचिकेता को बता दी है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये जो आत्म संबंधी मति है वो तर्क से प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर आपको बता लिया कि ओमकार का अवलंबन है तो है, अभी तो मान ही लो। मैं कितना भी झूठ बोल रहा हूँ, आपको मानना तो पड़ेगा ही। महत्व किसका है? महत्व क्या सिखाया जाता है उसका नहीं है हे नचिकेता। महत्व इसका है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आपकी श्रद्धा मुझे चाहिए, वही महत्व है। क्यों उसका है? कभी कभी गुरु आपके दिमाग, आपकी जो बुद्धि है वो कभी मान ही नहीं सके, ऐसी विपरीत बात भी बताते हैं, विचित्र बात भी बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि वो सोचने में आप इतने ओतप्रोत हो जाओ, आप इतने डूब जाओ कि दूसरे विचार ही आप नहीं कर सकते। उसका प्रयोजन बहुत बड़ा होता है। गुरुजनों का बोलना, चलना, उठना, बैठना, उसको पता है कौन से शिष्य, कौन से साधक के सामने मुझे क्या क्या करना है। कई बार विचित्र लगता है लक्षण, पर उसका वो विचित्र लक्षण वाला, वो विचित्र है, ऐसा न सोचते हुए आपको उसमें उत्प्रोत हो जाना है, वो जो भी कहे वो सोच लेना है। अगर दिन है और कहे कि ये रात है, तो ये रात कैसे है वो सोचने में आप इतने उत्प्रोत हो जाएंगे कि दूसरा सब भूल जाएंगे, वो क्षण के लिए आपका देहाध्यास चला जाएगा। और जब शांत अवस्था आ जाएगी, गुरुजन क्या करते हैं, देखिए तत्व रजस और तमस जो माया जो है, त्रिगुणात्मक माया, उससे ये जो शरीर मन बुद्धि के संघात की उत्पत्ति का कारण है, ये सत्व रजस और तमस हमारे भीतर एक के बाद एक आता जाता रहता है। अब जब गुरुजन ज्ञान देते हैं तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, आपके भीतर सत्व गुण होना ही चाहिए, नहीं तो ये ज्ञान की कोई विशेषता नहीं है, ये ज्ञान आपके भीतर नहीं जाएगा। और अब जब आप प्रवचन सुन रहे हैं और आपका तमस और रजस चल रहा है, तो गुरु का ही एकमात्र सानिध्य, इसीलिए ये जो संपर्क जो है, ये जो उपनिषद यानी गुरु के चरणों में बैठ के सुनने वाली बात है, वो इस प्रकार है कि वो कुछ वाणी से कुछ भी हो सकता है, वो वाणी से तत्क्षण आपके मन को सत्वगुणी कर देते हैं तत्क्षण। और वो सत्वगुण में तुरंत ही उसे लगता है कि अब माहौल बन गया है, तो तुरंत आत्मा का तत्वमसी है जो भी है वो उपदेश जो है वो कर देते हैं। वो खत्म हो जाने के बाद फिर हम अपने गुण में आते लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, अब जब यहाँ से अवलंबन की बात आई तो तर्क न करते हुए, अवलंबन है तो है, अब क्या है, उसी में विचार, उसी में पूरी श्रद्धा लगा के सब कुछ लुटा दो आप। ओहो, वो जानना है ना, अब तक कितने के अवलंबन लिए, ओहो ये शरीर के निर्वाह के लिए आप कितने लोगों के अवलंबन है, अवलंबन पर है, आपको पता है, सिर्फ आपके घर के जो मुखी जो है, जो पैसा कमा के लाते हैं, उसके ऊपर अवलंबित नहीं है, वो कितनों के ऊपर अवलंबित है, वो कितनों के ऊपर है। तो आपके ये शरीर के एक दो टंक के खाने के लिए इतना सारा अवलंबन, वो नहीं लग रहा हा? मन के विचार के लिए कितना अवलंबन, क्योंकि आप जो चीज का विचार करेंगे वो चीज किसी ने तो बनाई ही होगी ना, वो बनाने के लिए कितना अवलंबन। अब एक मोटर कार का आपने विचार किया, तो कार को एक आदमी नहीं बना सकता, उसके कितने हजारों पार्ट्स होते हैं, आधे यहाँ बनते हैं, आधे चाइना में बनते हैं, आधे जापान में बनते हैं, और कोई पांचवी जगह में सब जुटते हैं, और फिर जाके आपको मिलता है। एक कार मुझे चाहिए, उसका विचार भी कितने लोगों पर अवलंबित है। और ये जो अवलंबन है साहब, अब बराबर सुनना, हमारे दुख का कारण क्या है, ये जितने जितने अवलंबन है ना, वो चीज जो है सबके संस्कार लेके आती है, वो सिर्फ कार नहीं आती है, वो कार का जितना नट बोल्ट है, जो मैकेनिक ने फिट किया है, वो फिट करते हुए वो उसने जो विचार किया होगा वो आ जाएगा उसके भीतर, समझ में आया। और इसीलिए कई चीज हमको सुखी कर देती है, कई चीज हमको दुखी कर देती है, वो इसीलिए पता नहीं लगता है ये सूक्ष्म। तो फिर क्या करना, अभी बचना है भाई, ये सब संस्कार लेके आती है, आप बताते हैं यहाँ डराने लगे हैं, भाई विचार मत कर, इच्छा मत करो ना, अपने आप आने दो। अपने आप आया तो किसने विचार किया आपको ले जाने के लिए, भाई प्रारब्ध कर्म आपका ही है, बराबर है, पर वो प्रारब्ध कर्म की इच्छा अगर आपने नहीं की ना कि मुझे कार चाहिए, और आपके प्रारब्ध में कार है, तो वो इच्छा परमात्मा को करनी पड़ेगी और कहीं से आपको कार ला के देनी पड़ेगी बिना इच्छा। और उसने अगर बिना आपकी बिना इच्छा उसकी इच्छा से कार ला के दे दी, तो वो सब अवलंबन के जो संस्कार है वो किसे लगेंगे, वो निर्गुण निराकार को, और निर्गुण निराकार को तो कोई संस्कार नहीं लग सकते। इसलिए वो जो अनायास जो आ गया है उसे आप बहुत आनंद से भुगत सकेंगे, यह आपका निजी अनुभव है। सोच लीजिए, जो भी मांग के, जो भी वासना से आप झगड़ा करके, बहुत ही कष्ट से आप खींचतान करके जो भी चीज लेते हैं, उपार्जित करते हैं, और जो अनायास मिल जाती है, हाँ, ये ख्याल आया ना थोड़ा, तो ये अवलंबन की बात हुई। तो भाई अवलंबन तो लेना ही है, तो शरीर की सुखाकारी का देख लिया, मन का, बुद्धि का, तो यहाँ परमात्मा प्राप्ति के लिए भी अवलंबन की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो साधन जो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, बात बराबर है, पर साधन कैसा है, साधन अपूर्ण है। साधन अपूर्ण क्यों है, ये शरीर मन बुद्धि क्या, क्योंकि ये परमात्मा शरीर मन बुद्धि से पर है। अब ये साधन है, और ये साधन से कोई उल्टा ही जो परमात्मा है उसे जानना है, इसीलिए अवलंबन चाहिए। और अवलंबन का मतलब क्या है कि जब तक काम खत्म न हो तब तक ही उसका काम रहेगा, बाद में वो अपने आप छूट जाता है। तो ये अवलंबन की विशिष्टता क्या है? तो ये तर्क की बुद्धि जो है वो बंद कर दी। नचिकेता ने प्रश्न पूछा ये अवलंबन की, देखिए यहाँ शंकराचार्य जी संबंध भाष्य पूर्ण करते हुए, द्वैत की बात की पूर्ण करते हुए एक बात की ओर इशारा कर देते हैं कि ये जो मांडुक्य उपनिषद जो है उसका पहला प्रकरण जो है उसे आगम प्रकरण कहा गया है। आगम याने श्रुति, तो ये प्रकरण जो है वो श्रुति प्रधान है। श्रुति प्रधान याने अनेकों श्रुतियों में जो कहा गया है उससे ही यहाँ कहा गया है ये श्रुति प्रधान है। तो भाई श्रुति प्रधान क्यों कहा गया? तो यहाँ ओंकार के माध्यम से आत्म तत्व के प्राप्ति की उपयोगिता का वर्णन है। फिर से कहते हैं ओंकार के माध्यम से आत्म तत्व को प्राप्त करना है, उपाय रूपता बतलाई गई है। और इसीलिए कहा कि अब मैं श्रुति के दृष्टांत श्रुति के प्रूफ दे रहा हूँ कि आप मान लो। और सबसे बड़ी जो श्रुति है जो ओंकार का बड़ा अच्छा गान कर रही है वो है कठोपनिषद। इसलिए आपको नचिकेता की बात की। और ये बात क्यों की? यमराजा ने ओंकार का उपदेश कब दिया वो जानना ज्यादा जरूरी है। ओंकार का उपदेश दिया वो जानना जरूरी नहीं है, वो तो आपको मांडुक्य उपनिषद से भी पता लग जाएगा। नचिकेता ने बहुत सारे प्रलोभन दिए यमराजा ने, एक प्रश्न पूछा उसके लिए बहुत सारे प्रयोजन दिए, वो कहानी में हम ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि ये विषय छूट जाता है। पर आपको सिर्फ बता दें कि नचिकेता ने पूछा ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के मरणोपरांत, ये आत्मा है या नहीं है, रहता है या नहीं रहता है, और है तो उसका क्या होता है। हाँ तो यमराजा कहे कि ये सब भोग ले लो पर ये मरणम नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षी, ये मरण के संबंध में आत्मा के संबंध में आप कुछ मत पूछिए। कोई भी लोभ से वो आकर्षित नहीं होए, यानी कोई भी अवलंबन से आकर्षित नहीं होए। आपके जीवन में आपको अभी इसी क्षण नचिकेता बनना है ना, तो एक ही काम करना, कोई भी भोग कोई भी विषय की आसक्ति नहीं रखना। आप विचार को छोड़ दो, इसी क्षण आप नचिकेता बन गए। और जिस क्षण आप नचिकेता बनेंगे ना, कहीं ना कहीं से किसी को भी ये ओंकार का उपदेश देना पड़ेगा, आपको सुनना ही आपके कान में प्रवेश ही करेगा। हमें क्या बनना है? हमें नचिकेता बन जाना है। ये जो क्षण आ गई परम उपरति की, परम वैराग्य की क्षण आ गई, तब यमाचार्य ने उपदेश दिया। सर्वे वेदा यत् पदम मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। हाँ, सर्वे वेदा यत् पदं आमनन्ति, सब वेद इसी की बात कर रहे हैं, तब हमें कुछ नहीं होता, करते होंगे। ओ पर बात हमको कहां छू जाती है बात? यदि छन तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ओ हो देखो ब्रह्मचर्य याने मात्र शारीरिक भोग न करना, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य एट ऑल द लेवल, हाँ, आंख को रूप की इच्छा न करना, अप्रतिषिद्ध रूप की इच्छा न करना, वो ब्रह्मचर्य है। परमात्मा की मूर्ति की रूप की देखने की इच्छा कर ली तो ठीक है, वो क्लेश वृत्ति नहीं है, वो अक्लिष्ट वृत्ति है, उसकी ना नहीं है। क्योंकि फिर से तर्क आ जाएगा कि आप कैसे कहते हैं हमें गुरुजनों के चरणों की इच्छा करनी है, उसे देखना है, उसे दर्शन करना है, तो वो बात नहीं है। अप्रतिषिद्ध यानी जहाँ किसी का बुरा होने वाला हो, जहाँ मेरा ही सिर्फ स्वार्थ हो, ऐसा रूप देखने की अगर मैं इच्छा करूँ तो वो अप्रतिषिद्ध है। उसकी इच्छा न करनी वो ब्रह्मचर्य है, बुरा न सुनना वो ब्रह्मचर्य है, बुरी चीजों को स्पर्श नहीं करना, जो स्पर्श से कामोत्पन्न होता है ऐसी चीजों को स्पर्श न करना, अप्रतिषिद्ध को स्पर्श न करना, न बोलना, न सूंघना, न चखना, वो ब्रह्मचर्य है। ओहो, उसको जानने के लिए सभी भोग जिसमें क्षण मात्र आनंद तो मिलता ही है ना, भोग करने से आनंद तो मिलता ही है क्षण मात्र, तो हो ये क्षणिक क्षणिक आनंद को भी जो छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ, तपांसि सर्वाणि चयत वदंती, सिर को भोग को ही नहीं छोड़ता, वो तप भी करता है। यम नियम आदि जो पद्मतंजल योग के अष्टांग योग है, वो सभी नियमों को वो करता है। तपांसि सर्वाणि चयत वदंती, जिसके बारे में ही बात की जाती है, और वो पद है नचिकेता, मैं आपको कह रहा हूँ वो कौन सा पद है। ए तद देखिए, पहले ही आलंबन नहीं बता दिया, पहले आलंबन के बारे में बताया, सोच ले। तो जब शास्त्र आलंबन देते हैं तो वो आलंबन कैसा होता है, वो आलंबन हमें आसक्त करने वाला नहीं होता है। जब जीवन में व्यवहार में हम किसी का भी आलंबन रहते हैं ना, तो उससे आसक्ति हो जाती है। हाँ, और वो आलंबन देश काल से बद्ध होता है, वो आलंबन का स्वभाव हमें भी असर करता है। किसी के शरीर का आलंबन ले लिया तो भी मुक्ति नहीं होगी, क्यों, वो शरीर चला जाएगा। तो किसी के मन और बुद्धि का आलंबन तो ले लिया, पर वो पागल हो जाएगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये आलंबन जो है, आलंबन भी है और हमें छूता भी नहीं है, हम उससे आसक्त भी नहीं होते हैं, ऐसा आलंबन है। और इसीलिए यमाचार्य ने कहा, एतत् आलंबनम ब्रह्म, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत। ओहो नचिकेता, सुनिए, यह आलंबन ब्रह्म है, ये परम है, इसे जान के आपको जो करना है वो कर सकते हैं, जो इच्छा करते हैं वो आप कर सकते हैं। ये तो उसकी बहुत सामान्य बाय प्रोडक्ट बता दिया। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओहो, फिर बाद में बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसकी साइड इफेक्ट है। ब्रह्मलोके महीयते यानी वो परब्रह्म तक पहुंचाने देने वाला आलंबन है। शरीर मन बुद्धि का आलंबन अगर ले लिया जगत में, तो वो आलंबन जहां तक पहुंचा होगा वहीं तक हमें पहुंचाएगा। हाँ, शरीर की सीमा अन्नमय कोष तक ही है, वहां तक ही पहुंचाएगी। मन की सीमा सिर्फ विचार तक ही है आलंबन, पर ये आलंबन जो है शरीर मन बुद्धि से पर का आलंबन है, इसीलिए हमें पर तक पहुंचाएगा। क्योंकि ये आलंबन से पहुंचना क्या है, हम आलंबन पे ही अटक जाते हैं। आलंबन से हमें हमारा स्वार्थ क्या निकालना है, भाई वो परम तक पहुंचना है। आलंबन ने परम को थोड़ा भी छुआ होगा ना, तो ही वो हमें वहां तक पहुंचा सकेगा ना। आलंबन भी ऐसा ढूंढो, किसी का सहारा, इसका उसी का सहारा लो। मैं हमेशा कहती हूँ, एक बात आपको पहले भी बताई है, उसी का सहारा लो, उसी की दोस्ती करो जो आपसे थोड़ा ज्यादा सुखी हो। वित्त से नहीं, धन से नहीं, अंदर भीतरी संतोष से आपसे थोड़ा ज्यादा सुखी हो उससे दोस्ती करो। क्या होगा, मन का स्वभाव है, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा ही सामने वाले को सहन कर सकता हूँ, नहीं ज्यादा नहीं कम। अब गड़बड़ क्या होगी, मुझसे कोई दुखी होगा, थोड़ा कम सुखी होगा, उससे मैं अगर गुल मिल जाऊं तो क्या होगा, वो हमेशा मेरे सुख का लेवल उसके सुख के लेवल तक करने लगेगा, मेरा आधा काम करेगा आधा बिगाड़ेगा भी ताकि मैं उसके लेवल में आ जाऊं। और मेरे से जो शांत है, फिर बताती हूँ कि धन से कंपैरिजन मत करना, जो मन से शांत है संतुष्ट है वो तो मुख की आभा से दिख जाता है कौन संतुष्ट है और कौन नहीं है। हाँ, तो उससे आप गुल मिल गए, उसके साथ दो मिनट भी खड़े रहे तो वो दो मिनट में भी आप अनुभव करेंगे कि आपका सुख का लेवल ऊंचा हो गया है। क्यों, क्योंकि हर आदमी वो भी सोचता है कि मैं जितना हूँ उतना ही उसको कर दूं तो ही मैं उसके साथ गुल मिल सकता हूँ, नहीं तो मुझे मजा नहीं आती है। तो ये जो आनंद घन है, परमात्मा को जो जिसने जान लिया है उसके साथ आप बैठेंगे, उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, तो आपका आनंद का क्या होगा, पता है आपको। और इसीलिए ये सानिध्य की जरूरत है। इसीलिए ऐसे ही नहीं, वो बिना कुछ देखो, बिना कुछ आपके प्रयत्न किए उनके आनंद का जो लेवल है, वो आपके जो सुख का लेवल है वो एक कर देते हैं। और वो एक लेवल हो जाता है तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये सिर्फ देव के लिए ही नहीं है, ब्रह्म को जानने के लिए उसके जैसा ही बनना पड़ता है, तभी आप उसे जान सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म को जानने की और कोई व्यवस्था नहीं है, और सब जो करण है, सब जो माध्यम है, वो गौने पड़ते हैं, छोटे पड़ते हैं। और इसीलिए जब तक आप उस स्तर पर न पहुंच जाओ, तब तक ये आलंबन का सहारा लेना है। ये आलंबन यानी क्या, ये पनामा की जो नहर है वो अमेरिका में से जाती है, वहां क्या होता है, स्टीमर जब आ जाती है तो पानी भरता है, वो जो कैनाल जो है वो कैनाल में पानी भरता है। वो जो स्टीमर, कितनी करोड़ों टन की वो जो स्टीमर होती है, वो कुछ भी नहीं करती है ऊपर आने के लिए, पानी भरता है और अपने आप ऊपर आ जाती है। अब स्टीमर ने तो बहुत बड़ा सफर किया है, वहां आके वो स्टीमर अगर कहे कि मैं अपने आप ही जाऊंगी, मुझे उठा उचाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये ज्यादा पानी के आलंबन की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम वहीं डूब जाओ। अरे आगे जाने के लिए आलंबन हो ही गया, और जिसके ऊपर आप मजा से तैर के आए उसी का आलंबन लेना पड़ता है। हाँ, जो परमात्मा अधिष्ठान है, जो परमात्मा हम सब जो विकल्प है, वो सब विकल्प का जो अधिष्ठान है, हमारा जो अधिष्ठान है, उसी के ऊपर हम अब तक कर्म करते आए हैं, और अब तक अहंकार किया है कि मैंने किया, मैंने भुगता। अब उसे जानने के लिए, उसे जानने के लिए नीचे होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, उसका आलंबन लेना ही पड़ेगा। वो परमात्मा को जानने के लिए जो आलंबन है, जो अपलिफ्टमेंट है, वो ये ओम है। तो ये जो आलंबन है वो हमें आसक्त नहीं कर रहा, ये ओम का आलंबन है। तो ये ओम याने क्या, तो ये जो उपनिषद शुरू हो रहा है, ओम इति एतत् इदगम सर्वम। तो अब शंकराचार्य जी उपाय रूपता बताते हुए कहा कि ओम इति एतद्, ऐसा आलंबन कठोपनिषद में ही भी कहा है। एतद् वै आत्मा परम च अपरम च यदि ओंकार, मैत्रेय उपनिषद प्रश्न उपनिषद में भी कहा है, ओम इति सर्वम, ओम इति इदगम सर्वम, तैतरीय उपनिषद में भी कहा है, चांदोग्य उपनिषद में भी यह बात बताई है नचिकेता। क्या बताई है, यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णः, यद ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण्णः ओंकार एवेदम सर्वम, ओंकार ही सब कुछ है। जैसे एक पत्ता होता है, एक पान होता है, वृक्ष का जो पर्ण होता है, वो पर्ण के भीतर जो नस चली जाती है, वो पूरा जो पर्ण जो है, वो छोटी छोटी जो नस है उससे जैसे व्याप्त हो गई है, उससे परिपूर्ण होती है, पुष्ट होती है, ऐसे ही पूरा जो ये दृश्य प्रपंच जो है, वो वाणी रूप जो ये नस जो है उससे व्याप्त है, पूरा दृश्य प्रपंच। अभी बराबर ध्यान से सुनना, पूरा दृश्य प्रपंच ये वाणी से व्याप्त है। अगर ये पर्ण में से आप नस निकाल दीजिए तो पर्ण मर जाएगा। पर्ण का रस क्या है, पर्ण की पुष्टि क्या है, पर्ण का जीवन क्या है, तो ये नस है। ऐसे ही ये सब जो पूरा दृश्य प्रपंच जो है, उसका जो पुष्टि जो है, उसका रस क्या है, तो उसका जो रस है वो वाणी है, और ये वाणी जो है उसका अधिष्ठान कौन है, तो बोले वो ओम है। इसीलिए हम ओम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये ओम जो है मेरे जीवन में कहाँ छू रहा है, तो यहाँ अब भाष्य शंकराचार्य जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे अब दृष्टांत से बात चलती है, एक बाजू दृष्टांत चलता है, एक बाजू वही दृष्टांत हमारे जीवन में चलता जाएगा, अब शुरू होता है। देखिए रज्जू और सर्प का दृष्टांत है। अब जब हम यहाँ से रज्जू और सर्प ऐसा बोलते हैं ना, हमारा ये स्विच ऑफ कर देते हैं हम, कि अब ये बात ऐसी करते हैं ये लोग कि जो हमारे विचार में आने ही नहीं वाली है, अब थोड़ा 5 मिनट सहन कर लेंगे और उसके बाद जो बोलेंगे वो सुनेंगे, पर ये रज्जू, पर यहाँ शंकराचार्य जी ने कोई अलौकिक बात की है। अब ये रज्जू और सर्प की बात अब तक हम सृष्टि के विवर्त कारण के लिए कहते हैं ना, अब वो हमारे लिए कहते हैं, अब सुनने में थोड़ा आनंद आएगा। तो ये रज्जू के ऊपर सर्प जो उठ रहा है, सर्प का जो जन्म है वो क्या है, उसे हम विकल्प कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। तो रज्जू रूपी विकल्प, विकल्प याने विशेष कल्पना की गई है। विशेष कल्पना क्यों की गई है, क्योंकि है नहीं और दिख रही है। विशेष कल्पना क्यों, क्योंकि जितना अधिष्ठान है अधिष्ठान का जो रूप है वैसा का वैसा ही रूप ये भ्रांति का भी है। हाँ, तो ये विशेष कल्पना हो गई। ऐसे ही आत्मा रूपी अधिष्ठान पर, आत्मा कैसा है, अदृश्य अग्राह्य अगोत्रम, ऐसा आप सोच लो। आत्मा रूपी ये पूरा जो है, आत्मा रूपी जो अधिष्ठान है उसके ऊपर विकल्प रूप कौन है पता है? अब हम आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने बताया कि प्राणादि विकल्प जो उठ रहे हैं, ओहो अब हमारी बात की है। ये उपनिषद में पहली बार ये भाष्य में ये बात की गई है कि आत्मा रूपी अधिष्ठान में प्राणादि विकल्प जो उठ रहे हैं, प्राणादि विकल्प यानी ये आपका जो अन्नमय कोष है, ये आपका प्राणमय कोष है, ये आपका मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है, वो क्या है? वो विकल्प है। बस अब तक हम इसको क्या देख रहे थे? प्राइमरी देख रहे थे, फर्स्ट देख रहे थे कि भाई शरीर मन बुद्धि का संघात, और अभी उससे पर आत्मा को जानना है। नहीं, अभी इसको दूसरा नंबर दे दिया, इसको विकल्प का नंबर दे दिया कि आत्मा रूप अधिष्ठान में जैसे रज्जु विकल्प रूप दिखता है तब, सर्प विकल्प रूप दिखता है तब रज्जु के दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन किसके हो रहे हैं? दर्शन विकल्प के ही हो रहे हैं। ऐसे आपको ये शरीर मन बुद्धि का जो संघात दिख रहा है, जो दर्शनीय है, जिसके दर्शन हो रहे हैं वो विकल्प है। और ये जो प्राणादि विकल्प है, ये जिस वाणी से कहा जाता है वो ओमकार है, और ये जो ओमकार है वो ब्रह्म है। अब ऐके देखिए, एक दृष्टांत की बात अब बता के, दृष्टांत यानी जो अपनी बात है वो मैं कल बताऊंगी समय के अभाव से, पर दृष्टांत की जो बात है वो खाली दो मिनट के लिए ही सुन लेंगे कि जब ये रज्जु है, रज्जु के ऊपर सर्प की विकल्पना हुई, अब मैं क्या कहती हूँ कि ये सर्प है, मैंने वाणी का उपयोग किया कि नहीं? ये सर्प है, मैं हकीकत में क्या कह रहे हूँ? ये सर्प है यानी मैं किसका वर्णन कर रही हूँ, हकीकत में किसका वर्णन कर रही हूँ, बराबर बताइए। हाँ, अधिष्ठान का ही ना, रज्जु का ही वर्णन है। ये सर्प है, मेरा अज्ञान है उसके बारे में, पर वर्णन किसका, वर्णित कौन हो रहा है? वर्णित तो रज्जु ही हो रहा है ना। तो मैं जब कहती हूँ कि ये सर्प है, यानी मैं रज्जु का ही वर्णन कर रही हूँ, मैं जब मेरे मुख से कह रही हूँ कि ये सर्प है, हकीकत में जो रज्जु है उसकी बात जब मैं कर रही हूँ, मैं उसे अपना शब्द का स्वरूप दे रही हूँ, तो वो ज्ञान जब मेरे भीतर रज्जु का जाता है शब्द के द्वारा, तो वो जो शब्द है रज्जु शब्द, शंकराचार्य जी ने इतनी अच्छी बात की है कि रज्जु शब्द रज्जु से कितना दूर है, मुझे इतना बता दीजिए। हाँ, रज्जु शब्द रज्जु से कितना दूर है? एक क्षण का भी नहीं ना। बस ऐसे ही ये जो आत्म तत्व पूरा अधिष्ठान है, ओंकार रूप वाणी से मैं जब कह रही हूँ कि ये अन्नमय कोष है, ये प्राणमय कोष है, ये मनोमय कोष है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? अधिष्ठान की ही बात कर रही हूँ। तो ये जब मैं बोल रही हूँ, ये वाणी जो शब्द रूप अब निकल रही है, ये जो वाणी है वो ये अधिष्ठान से कितनी दूर है? जितना रज्जु रज्जु शब्द से दूर है। यानी ये वहाँ रज्जु और रज्जु शब्द का ऐक्य किया, वैसे ही ये आत्मारूपी जो अधिष्ठान है उसके ऊपर विकल्पना को वर्णित जो वाणी है, वो वाणी को ओम कहा है, और वो वाणी क्या ऐक्य, वो ओम का ऐक्य वो आत्मा से करने की बात, यानी ये मांडुक्य उपनिषद। और वो कैसे ऐक्य करना है, भाष्य की ही, शंकराचार्य की ही भाषा से हम ये कल सुनने का और ज्यादा सरलीकरण करने का हम प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।
पूज्य माताजी के चरणों में प्रणाम। आज 22 फरवरी शुक्रवार, महावली एकम